नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने आश्वासन दिया, कच्चे तेल का व्यापक भंडार उपलब्ध है, सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, एलपीजी उत्पादन स्थिर तरह पर्याप्त बना हुआ है। पश्चिम एशिया में खाड़ी क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादन केंद्रों पर व्यापक हमलों से संघर्ष तेज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति के बारे में बहरीन के शासक से बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नया आयकर अधिनियम विवादों को कम करेगा और अनुपालन को सरल बनाएगा। सरकार वर्ष 2030 तक 100% नामांकन के लक्ष्य के साथ पढ़ाई के दौरान स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के नामांकन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी। सरकार ने जुआ और सट्टेबाजी की 300 अवैध वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक किया। और तन्वी शर्मा फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार विस्तार से। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, घरेलू एलपीजी उत्पादन स्थिर है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में उपभोक्ताओं को 11,300 टन व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति की गई। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है और खुदरा दुकानों पर एलपीजी की कोई कमी नहीं है।
एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। पैनिक बुकिंग में काफी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है।
सुश्री शर्मा ने बताया कि प्रीमियम पेट्रोल की दरों में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि सामान्य पेट्रोल की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, एंड दैट इज हार्डली 2-3 or 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल। पेट्रोल और डीजल के प्राइस डीरेगुलेटेड है, उसको सरकार रेगुलेट नहीं करती है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री दुर्घटना नहीं हुई है।
हमारे सारे 22 जहाज और 611 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं जो पर्शियन गल्फ रीजन में हैं, और डीजी शिपिंग उनकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहा है। पिछले 24 घंटों में एक जो हमारी 24/7 हेल्पलाइन है, कम्युनिकेशन सेंटर है और कंट्रोल रूम है, उसमें करीब 125 कॉल और 200 से ज्यादा ईमेल प्राप्त हुए जिनका जवाब दिया गया, और पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविक को रिपैट्रिएट करके साइन ऑफ के बाद भारत वापस लाया गया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान, मलेशिया, फ्रांस, जॉर्डन और कतर के नेताओं से बातचीत की और पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए संवाद, तनाव कम करने और शांति पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने आर्मेनिया, अजरबैजान के रास्ते 284 तीर्थयात्रियों सहित 913 नागरिकों को निकाला है।
ईरान के रास्ते बहुत सारे भारतीय नागरिक जो ईरान में हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते देश लौट रहे हैं, उसमें वृद्धि हुई है। अब 913 भारतीय नागरिक ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान में एम्बेसी की मदद से उस सीमा पार कर चुके हैं और कई लोग इसमें से वापस आ भी चुके हैं। 284 तीर्थयात्री वहां पर फंसे हुए थे, वो सभी 284 तीर्थयात्री अब भारत वापस आ गए।
विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के संयुक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि कल इराक से सुरक्षित बचाए गए तेल टैंकर एमटी सेफसी विष्णु के 15 भारतीय चालक दल के सदस्यों के जल्दी ही भारत लौटने की उम्मीद है। इसराइल ने ईरान में नूर के आसपास के क्षेत्रों सहित कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसराइल की सेना ने कहा है कि ईरान और हिजबुल्ला के खिलाफ सभी लक्ष्य हासिल होने तक सैन्य अभियान जारी रहेगा। उधर ईरान ने पूरे क्षेत्र में इसराइल के ठिकानों और अमेरिका के हवाई अड्डों पर नए हमलों की शुरुआत कर दी है। खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा केंद्रों पर दागे गए ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद खाड़ी सहयोग परिषद के कई देश हाई अलर्ट पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने हमले के प्रयासों के बाद एहतियात के तौर पर अबू धाबी में हबशान गैस सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। एक रिपोर्ट। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी इसराइल के हमले में मारे गए हैं। जवाब में ईरान ने संघर्ष को और बढ़ाने की चेतावनी दी है, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान कोई संयम नहीं बरतेगा, क्योंकि उसके पूरे क्षेत्र में ऊर्जा और सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले जारी हैं। उधर लेबनान में भी स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। इसराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान के दक्षिणी कस्बों पर हमले किए, जिनमें कई लोग घायल हो गए। लेबनान सरकार मानवीय संकट से जूझ रही है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। विस्थापन को तत्काल रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती मांग के बीच लेबनान सरकार नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि हिजबुल्लाह इजरायली सेना पर रॉकेट हमले जारी रखे हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपाली पांडे।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहरीन के शासक हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बातचीत की और ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की तथा ऊर्जा रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने बहरीन में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए निरंतर समर्थन देने के लिए बहरीन के शासक को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, दक्षिण कोरिया के उप विदेश मंत्री पार्क यून जू, भारत में कजाकिस्तान के राजदूत आजमत येस्कराएव और बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष पर विचार साझा किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम हो गई है। नई दिल्ली में आज आयकर अधिनियम 2025 पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ में उन्होंने कहा कि नया अधिनियम कम पेचीदा है और लोगों को सरल ढांचा प्रदान करता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि छोटे व्यवसायी और पेशेवर अर्थव्यवस्था के इंजन हैं और नए अधिनियम के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना को मजबूत किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के रेल भवन में वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री वैष्णव ने स्टेशन पहुंच, यात्री सुविधाओं के उन्नयन और सुरक्षा संबंधी सुदृढ़ीकरण में हुई प्रगति का आकलन किया। बैठक में प्रवेश नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और स्टेशन परिसर के भीतर सुगम आवागमन जैसे उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लागू किए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक तख्त श्री दमदमा साहिब की पवित्र भूमि तलवंडी साबो तक रेल संपर्क को मंजूरी दे दी है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज बठिंडा में मंत्रालय की इस पहल की घोषणा की। सरकार बीच में ही विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की पहचान करने और उन्हें दाखिला दिलाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कदम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2030 तक प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण नियमित विद्यालय जाने में असमर्थ बच्चों के लिए मुक्त विद्यालय एक व्यवहारिक विकल्प है। मंत्रालय ने बताया कि वह शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता और मानकीकरण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। देश भर में 10,000 से अधिक अध्ययन और परीक्षा केंद्रों के साथ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण प्रभावित विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय बोर्ड है। यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा और कौशल विकास तक समावेशीय और लचीली पहुंच प्रदान करता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
सरकार ने अवैध जुआ और सट्टेबाजी की 300 वेबसाइट तथा एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि सट्टा और मटका जुआ नेटवर्क के साथ साथ रियल मनी कार्ड और कैसीनो गेमिंग एप्लीकेशन पर भी कार्रवाई की गई है। सूत्रों ने बताया कि अब तक कुल मिलाकर लगभग 8,400 ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक किया जा चुका है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन अधिनियम 2025 हानिकारक ऑनलाइन पैसों वाले खेलों, उनके विज्ञापनों और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाता है और ई स्पोर्ट्स तथा ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है। यह कानून ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है जो जल्दी पैसा कमाने के झूठे वादे करके लोगों को आकर्षित करते हैं और उनकी लत, आर्थिक नुकसान और सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य खासकर युवाओं और कमजोर वर्गों को इन खेलों के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और निष्ठा से जुड़े बुरे प्रभाव से बचाना है। इस कानून के तहत ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को चलाने, संचालित करने या बढ़ावा देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कानून का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में आज चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 10 प्रतिज्ञाओं का उल्लेख किया गया है। लक्ष्मी भंडार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, युवाओं का समर्थन, भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सहायता, महिलाओं की मदद, बंगला युवा साथी और अन्य कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र की कड़ी आलोचना की है। इस बीच केरल में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। एक रिपोर्ट।
केरल विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार है। ईद उल फितर के कारण आज पूरे राज्य में अवकाश था। शनिवार को नामांकन केंद्रों पर भीड़ ज्यादा बढ़ने की संभावना होगी क्योंकि तीनों प्रमुख दलों ने अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों को सोमवार को भी नामांकन दाखिल करने का अवसर मिलेगा। तिरुवनंतपुरम से स्मित एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौम्या शरण।
निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और व्यक्तियों या संगठनों को भी अपने विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले स्वीकृति लेनी होगी। ये आकाशवाणी है। देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार कल पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ये त्यौहार रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार आत्मसंयम, दान और जरूरतमंदों के प्रति करुणा का संदेश देता है। उत्तराखंड में 4 धाम तीर्थ स्थलों सहित ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा के कारण तापमान में गिरावट आई है। एक रिपोर्ट।
प्रदेश में कल से बदले मौसम के मिजाज के चलते एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ और रूपकुंड सहित ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ पर्वतीय जिलों में 3000 मीटर व इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
तन्वी शर्मा ने ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल में नात्सुकी निदेरा को हराया। एक अन्य मुकाबले में मालविका बंसोड़ और ईशा रानी बरुआ आमने सामने होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आश्वासन दिया, कच्चे तेल का व्यापक भंडार उपलब्ध है, सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, एलपीजी उत्पादन स्तर तरफ पर्याप्त बना हुआ है। पश्चिम एशिया में खाड़ी क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादन केंद्रों पर व्यापक हमलों से संघर्ष तेज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति के बारे में बहरीन के शासक से बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नया आयकर अधिनियम विवादों को कम करेगा और अनुपालन को सरल बनाएगा। और तन्वी शर्मा फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।